नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत पहुंच गए हैं। श्री मोदी आज 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें सड़क, बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। वे आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमण में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमण कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री की दर्ज की गई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग दर्शाती है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। यह छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया।
हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। श्री खनाल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आए हैं। इस दौरान श्री खनाल विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंग रेड्डी ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में कार्य करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों की सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एशिया कप अंडर-18 हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान में भारतीय समय के अनुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारत का पूल ए में 9 अंक के साथ दूसरा स्थान है। टीम ने ग्रुप चरण में मेजबान जापान के खिलाफ एकमात्र हार के बाद चीनी ताइपे पर 13-1 की शानदार जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।